ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का आज के कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और आज बहुत ही पवित्र उत्सव है, आज वसंत पंचमी है और आज ही के दिन बहुत महान महान आचार्यों के आविर्भाव और तिरुभाव दिवस है। श्री रघुनंदन ठाकुर, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, पुंडरीक विद्यानिधि जी, वैष्णु प्रिया माता जी, इन सब के आविर्भाव दिवस है और श्री विश्वनाथ चौधरी ठाकुर जी के तिरुभाव दिवस है। तो कितना महान दिन है ये, और किसकी व्याख्या करें, सभी आचार्य बहुत महान है। इससे पहले हम व्याख्या शुरू करें, बसंत पंचमी के विषय में थोड़ा बताना चाहेंगे। भगवान श्री कृष्ण मुख्यतः जो रासलीला भगवान की प्रसिद्ध है, तो शरद ऋतु की और एक वसंत ऋतु की। शरद ऋतु में भगवान रासलीला करते हैं, जैसे कि पीछे भी प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बता रहे थे, महाराज बता रहे थे कि शरद ऋतु की रासलीला भगवान रचते हैं वंशीवट में, और वसंत ऋतु की रासलीला भगवान करते हैं चंद्र सरोवर में गोवर्धन पर्वत के तट पे। और जैसे कि भगवान के धाम में जब भगवान लीला करते हैं तो वृंदावन में तो हर चीज चिन्मय है, तो हमें प्रत्येक जीव, पहाड़, पेड़, नदी, यहां तक कि जितनी भी ऋतु हैं, सीजन्स हैं, सबका केवल एक ही उद्देश्य है कि भगवान के आनंद को कैसे बढ़ाया जाए। तो जब भगवान लीला कर रहे होते हैं तो कोई भी ऋतु किसी भी समय प्रकट हो सकती है। अगर भगवान की लीला के लिए वर्षा की आवश्यकता है तो वर्षा ऋतु प्रकट हो जाएगी। भगवान की लीला के लिए मंद मंद सर्दी चाहिए तो शरद ऋतु प्रकट हो जाएगी। वसंत ऋतु में जिस तरह के फल फूल चाहिए लीला में भगवान का रस बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार से लीला वहां पे ऋतु वहां पर प्रकट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वहां ब्रजवासियों को भगवान को प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि अभी शीत ऋतु आएगी, अभी ग्रीष्म ऋतु आएगी, अभी वसंत ऋतु आएगी। नहीं, जैसे भगवान की इच्छा होती है उसी के अनुसार जो जितनी भी ऋतु है वो भगवान की सेवा में जुड़ती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर साधक हैं, साधना कर रहे हैं। साधना भक्ति को प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, यानी कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं यहाँ पे भक्ति की। तो जैसे आज वसंत ऋतु है, शुभारंभ होती है, तो ये बहुत सुंदर और इसमें मधुर मधुर फल और फूल प्रकट होते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो सभी भक्त लोग जैसे वसंत ऋतु में भगवान वसंत रास रचते हैं, तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए इस सीजन के जो सुंदर सुंदर फूल हैं, पीले रंग के फल हैं, वो भगवान को अर्पण करते हैं। भक्त लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, कुछ लोग रंग नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ जो बदल सकते हैं उनको बदलना चाहिए, और पीले वस्त्र धारण करके भगवान की प्रसन्नता के लिए आएं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए पीली पीली वस्तुएं भगवान को जो सीजन की वस्तुएं हैं वो अर्पित करें। तो इस जंग से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं भगवान की लीला में उनके आनंद को बढ़ाने के लिए। तो आज ही के दिन महान आचार्यों का आविर्भाव और तिरुभाव दिवस है, तो हम सभी आचार्यों से प्रार्थना करते हैं। ये जितने आचार्यगण हैं ये अभी भी हमारे लिए एक्सेसिबल है, यानी कि हम इनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ये समय और स्थान की परिधि से परे हैं, ऐसा नहीं कह सकते ये तो 200 वर्ष पहले आए थे, अब हमारे लिए इनका क्या रेलेवेंस है। नहीं, ये अभी भी हम, हमारे को जो अभी भक्ति श्रील प्रभुपाद जी कृपा से जिस पैकेज में, जिन शास्त्रों के रूप में जो हमें कृपा प्राप्त हुई है प्रभुपाद जी के माध्यम से, ये सारी कृपा इन्हीं आचार्य वृंदों से आ रही है। तो जब इन आचार्यों का हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत बड़ा बड़ा योगदान है, आज हम यहाँ पर स्थिति में हैं इन सबकी कृपा से। ये सब हम चर्चा करेंगे, और एक एक आचार्य का जीवन चरित्र बहुत महान है, और हम जो आचार्यगण प्रकट होते हैं ये सबके सब मुक्त जीव हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं में गोहितम लीलाओं में भाग मिलने वाले अधिकांश का मंजरी स्वरूप है। और जब ये लीला करते हैं इस भूमि में आकर, तो अपने जीवन चरित्र के माध्यम से हमें बहुत से इंस्ट्रक्शंस देते हैं और बहुत से इंस्पिरेशन देते हैं, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं और हमें निर्देश प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं आचार्यों में से आज हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के जीवन चरित्र पर चर्चा करेंगे और सभी गुरुजनों से वैष्णवों से प्रार्थना करेंगे कि हम इनकी कृपा को प्राप्त कर सकें और अपने आप को शुद्ध कर सकें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी को सभी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में एक रसिक आचार्य बताया जाता है, महान रसिक आचार्य। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं लिखी श्रीमद् भागवतम पे और भगवत गीता में, सारार्थ दर्शनी और सारार्थ वर्षिणी। सारार्थ वर्षिणी भगवत गीता पर टीका है, सारार्थ दर्शनी भागवतम पे। और इनको वैष्णव चूड़ामणि बोला जाता है, सभी वैष्णव में प्रमुख। विश्वनाथ चक्रवर्ती, विश्वनाथ जी का अर्थ है, विश्वनाथ कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे विश्व के नाथ। तो विश्वनाथ शब्द से मतलब निकलता है कि जो कि विश्वनाथ के पति यानी कि कृष्ण के प्रति भक्ति के मणि को प्रकट करे, भक्ति को हम सबके हृदय में जो प्रकट करे वो है विश्वनाथ। और चक्रवर्ती का अर्थ है जो कि भक्ति के चक्र का विस्तार करे, तो इसके लिए नाम पड़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती। और ठाकुर का अर्थ है वैष्णव चूड़ामणि, सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ, तो ये उनके नाम का अर्थ है। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय माना जाता है कि जिस जन से रूप गोस्वामी जी, वैसे तो रूप मंजरी है लेकिन उनको वाग देव अवतार भी बोला जाता है, यानी कि वाणी के देवता के अवतार। और इसी ढंग से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने जिस ढंग से रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों पर टीकाएं लिखी, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी को रूप गोस्वामी जी का अवतार भी माना जाता है। वैसे तो कृष्ण लीला में ये विनोद मंजरी है और लेकिन को रूप गोस्वामी जी का भी अवतार बोला जाता है। तो इनका जो प्राकट्य हुआ था सन 1638 में बंगाल में देवग्राम में हुआ था, और बचपन से जब ये कहते हैं जब ये अपने घर में प्रकट हुए तो पूरे घर में एक आध्यात्मिक प्रकाश, दिव्य ज्योति, हम सब होते हैं हमारा जन्म होता था हमारा ऐसे नहीं, दिव्य ज्योति थी पूरे घर में। और ये इतने बाल रूप में इतने आकर्षक थे क्योंकि जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम होता है वो भी कृष्ण की तरह सर्व आकर्षक बन जाते हैं। एक साधारण बालक जब इस संसार में पैदा होता है तो लोग बोलते हैं बच्चा तो भगवान का रूप है, लेकिन ऐसे बच्चे भगवान के रूप नहीं होते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जो प्रकट होते हैं ये भगवान के रूप होते हैं। हम जो साधारण बच्चे आते हैं माँ के गर्भ से निकलते हैं खून से लथपथ रोते चिल्लाते हुए, हमारे हृदय में काम वासनाएं भरी होती है, पिछले जन्म में भी काम वासनाएं पूरी नहीं हुई, अब भी पता नहीं होंगी नहीं होंगी, इसी चिंता में पैदा होते हैं। लेकिन जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रकट हुए तो दिव्य ज्योति से पूरा घर भर गया और सबको बहुत आकर्षक लग रहे थे। और बचपन से ही एक साधारण बालक के खेलते कूदते नहीं थे, बचपन से ही इनको श्रीमद् भागवतम पढ़ना और सुनना, बस पूरा एब्जॉर्प्शन भागवतम में। और अगर कोई भागवतम को इतना ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा केवल उसी की भी चिंता करता रहेगा, तो भागवतम में लिखा गया है वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम चला है तुकम। तो भगवान की भक्ति में जुड़ेगा निश्चित रूप से दो फल होंगे, क्या क्या होंगे? ज्ञान और वैराग्य। हम लोग भक्ति में कितना प्रगति कर रहे हैं हम अपने जीवन में देखें कितनी मात्रा में ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो रहा है। वैराग्य कोई दिखावे की बात नहीं है, तुरंत कोई साधारण बालक थे बिल्कुल वैरागी है ना, तो जब इतना ज्यादा वैराग्य इनके माता पिता ने एक छोटे बालक के हृदय में देखा तो खुशी हुई होगी चिंता हुई होगी, बहुत चिंता की बात है, बहुत ही चिंता की बात है। छोटा सा बालक, कोई रुचि नहीं इसको, केवल भागवतम पढ़ना बस और वैराग। तो उन्होंने क्या किया फिर, इसका इलाज क्या होता है? तुरंत विवाह कर दो सब ठीक हो जाएगा। तो तुरंत विवाह कर दिया गया उनका एक बहुत सुंदर बालिका के साथ जिनका नाम था विभा। तो जब विवाह हो गया तब भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के हृदय में कोई आकर्षण नहीं, और हमेशा भक्तों के संग में भागवतम के अध्ययन में और भगवान के नाम के जप में रुचि रहती थी। तो उनके बड़े भाई थे जिनसे शिक्षा ग्रहण करते थे, उनका नाम था रामभद्र चक्रवर्ती। तो उनके बड़े भाई ने देखा कि इनकी इस बालक में इतनी रुचि है तो इनको और हायर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तो उन्होंने उनको सैजाबाद में भेज दिया साथ में गांव था जहां पे एक बहुत महान वैष्णव रहते थे कृष्णचंद चक्रवर्ती के नाम से। तो उन्होंने जाके उनसे शिक्षा प्राप्त की और फिर उन्होंने दीक्षा के लिए जब अपने गुरु को बोला तो उन्होंने बोला मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, तुम मेरे ही शिष्य से दीक्षा ले लेना, जिनका नाम था राधा रमन चक्रवर्ती। तो ये सब नरोत्तम दास ठाकुर जी की उसमें लाइन में आ रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी के एक शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती, उनके शिष्य थे कृष्णचरण चक्रवर्ती, उनके शिष्य थे राधा रमन चक्रवर्ती, उनके शिष्य बने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और नरोत्तम दास ठाकुर जी के गुरु थे लोकनाथ स्वामी और उनके गुरु थे कौन, स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो इस संग से ये गुरु परंपरा में जुड़े। तो जब दीक्षा प्राप्त कर ली विश्वनाथ चक्र ठाकुर पाची ने और इन्होंने एक स्कूल खोल दिया और इतनी यंग युवावस्था में इन्होंने रूप गोस्वामी जी के तीन ग्रंथों में टीकाएं लिखी, भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर उन्होंने टीका लिखी, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उज्ज्वल नीन मणि के ऊपर टीका लिखा उज्ज्वल नीन मणि किरण, लघु भागवतम के ऊपर टीका लिखी भागवतम काना। तो इतनी कम आयु में तीन तीन टीकाएं लिख दी। तो अभी भी बताया जाता है कि जो सैजाबाद का शहर है बंगाल में वो प्रसिद्ध है कि यहाँ पे आगे विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने अपना एक स्कूल खोला था और तीन महान ग्रंथों के ऊपर टीका लिखी। इसके बाद इन्होंने अपने एक अपने बड़े भाई से पूछा राम मंदिर चक्रवर्ती जी से कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो उनके भाई ने बोला अगर प्रश्न पूछना है तो उनके भाई ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आपने भागवतम को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है? बोला हाँ मैंने भागवतम को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। इनके भाई ने कहा कि मैं तुम्हें उत्तर तब दूंगा चाहो दोबारा से भागवतम पढ़ो और उसको बोलो। तो फिर बेचारे दोबारा से गए और बहुत ध्यान पूर्वक उन्होंने भागवतम पढ़ी। फिर उनके पास आए, हाँ मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ। बोलो आप क्या प्रश्न है, कोई हमसे कोई प्रश्न इस ढंग से पूछे? हम बोले पहले पूरी भागवतम पढ़ के आओ फिर प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन पूरे पढ़ के आए, बोले अब क्या प्रश्न है? तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो उनकी इतनी रुचि देखी जब वृंदावन जाने की तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आप वृंदावन जा सकते हैं। और फिर उन्होंने अपने गुरु से भी आशीर्वाद दिया और फिर वो वृंदावन में आए। उस समय वृंदावन की स्थिति बहुत ही भयावह थी। जीव गोस्वामी जी का तिरुभाव हो गया था, जानवा माता जी का तिरुभाव हो गया था और मुगल राजा औरंगजेब का राज्य था और औरंगजेब ने आके मथुरा और वृंदावन के सारे मंदिरों को तहस नहस कर दिया था, वैष्णव और पुजारियों का वध कर दिया था, स्त्रियों का बलात्कार किया था, लूटपाट मचा दी थी और बहुत जो भी वैष्णव संस्कृति उसको सबका सर्वनाश कर दिया। बहुत मुश्किल से गोड़िया वैष्णवों ने राधा गोविंद देव मदन मोहन जी राधा दामोदर जी और राधा विनोद जी को लेकर वो जयपुर तक पहुंच गए थे। लेकिन पूरे गोड़िया वैष्णव संस्कृति का तहस नहस हो गया उस वृंदावन को, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रकट किया, षट गोस्वामी ने इतनी मेहनत की थी, भगवान की लीला स्थलों को दोबारा से प्रकट किया था, सुंदर सुंदर मंदिर बनाए थे, लेकिन औरंगजेब ने आके सब तहस नहस कर दिया। जब विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने यह स्थिति दिखी तो उनको बहुत दुख हुआ। लेकिन उनको लगा कि भगवान कृष्ण ने मुझे यहाँ पर भेजा है, इसका अर्थ है कि भगवान मुझे एक माध्यम बनाना चाहते हैं दोबारा से वृंदावन की महिमा को पुनः जागृत करने के लिए। तो हम देखते हैं इस सनातन धर्म के इतिहास में जब जब प्रचार रुका है तब तब ये अधर्म बढ़ा है। और जैसे हम देखते हैं पूरे सनातन धर्म में देख रहे हैं, बाद में रामानुजाचार्य आए, मध्वाचार्य जी आए, उन्होंने प्रचार शुरू किया, फिर से धर्म की महिमा की स्थापना हुई। लेकिन जैसे ही प्रचार कम होता है रुकता है अधर्म बढ़ना शुरू हो जाता है और साथ साथ में अपसंप्रदायें बढ़ती हैं। तो जब गोड़िया वैष्णव संस्कृति सही ढंग से नहीं फैल रही थी तो फिर क्या हुआ, अपसंप्रदाय बढ़ने शुरू हो गए, सहेजिया बढ़ना शुरू हो गए, जात गोसाई बढ़ना शुरू हो गए। तो ये जब सब स्थिति देखी विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने तो बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने बोला आगे आने वाले जो जनरेशन हैं उनके लिए वृंदावन की महिमा को कैसे स्थापित किया जाए। तो ये हम सब का भी जिम्मेवारी है। अगर हम चाहते हैं कि गोड़िया वैष्णव संस्कृति आगे बढ़ती रहे, चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की है कि ये आंदोलन अगले 10,000 सालों तक चलता रहेगा। तो 10,000 वर्षों तक पूरे जोश से ये आंदोलन आगे बढ़ता रहे, इसके लिए हमें खूब जोर शोर से प्रचार करना होगा। हमें केवल इतने में संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ जी अब तो हमने 16 माला का जप कर ली है, दीक्षा भी हो गई है, अब हम बिल्कुल सेटल हो गए हैं। नहीं, ये सेटल नहीं, अभी अनसेटल हो जाएंगे अगर हम कुछ जोर से प्रचार नहीं करेंगे। अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। हम देख रहे हैं इस संसार में किस किस तरह के धर्म के नाम पे कितने बड़े बड़े नाटक हो रहे हैं। तो हम लोग उनको तो क्रिटिसाइज कर दें, लेकिन केवल क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने प्रचार को बढ़ाना होगा। धर्म के नाम पर इतना मजाक हो रहा है, इसी तरह से और घिनौना मजाक हो रहा था वृंदावन धाम में। तो विश्वनाथ चकुर ठाकुर बात बहुत चिंतित हुए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे कृपया कुछ सहायता दीजिए, कुछ ऐसे भक्तों को भेजिए जिनके साथ मैं मिलकर चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का सही ढंग से प्रचार कर सकूं। तो जब कोई भक्त बहुत ही गंभीरता से सिंसियरली हृदय से भगवान को पुकारते हैं और उनकी इच्छा शुद्ध होती है तो भगवान निश्चित रूप से मदद करते हैं। ऐसे ही हमने देखा था भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय भी यही स्थिति थी और उन्होंने प्रार्थना की तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और ऐसे हम देखे शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में गए और उन्होंने ये स्थिति देखी कि कैसे मेरी वाणी यहाँ पे प्रभावशाली होगी, तो उन्होंने प्रार्थना की और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनके सामने कुछ सिंसियर युवकों को भेजा जो उन्होंने उनको मदद की प्रचार में। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी की सहायता करने के लिए एक वैष्णव उनके पास आए जिनका नाम क्या था, बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण जी पहले उन्होंने शंकराचार्य जी की फिलॉसफी को पढ़ा, फिर उन्होंने मध्वाचार्य जी की फिलॉसफी को सिद्धांत को पढ़ा, फिर ये जगन्नाथपुरी में जाके इन्होंने गौड़िया वैष्णवियों का संग किया और ये बाद में पूर्ण रूप से गौड़िया वैष्णव बन गए। और फिर ये वृंदावन में आए और विष्णु चक्र ठाकुर पाद जी से मिले और उन्होंने दोनों ने मिलकर खूब जोर जोर शोर से गौड़िया वैष्णव सिद्धांत का प्रचार किया। यहाँ पे ये प्रचार कर रहे थे और उधर उनके गुरु, क्या नाम था उनके गुरु का, राधारमन चक्रवर्ती जी, इनके गुरु ने इनको बुलाया वापस कि वापस आओ। तो ये वापस आए, गुरु का आदेश था, सहजाबान इनके गुरु थे। तो इनके गुरु ने बोला अरे भाई तुम्हारा तो विवाह भी हुआ हुआ है, मुझे मालूम चला तुम्हारी पत्नी भी है और अभी तक तुम उनके साथ रहते भी नहीं हो, और उनकी पत्नी की आपकी सासू माँ मेरे पास आई थी, वो बोले जब से विवाह हुआ है कोई रुचि नहीं, कुछ नहीं, कुछ संस्कार नहीं हुआ, जाओ घर में और पत्नी के साथ एक रात बिताओ। तो गुरु का आदेश था, ये चले गए। पत्नी के, पत्नी बहुत सुंदर थी, क्या नाम था पत्नी का, हाँ, उनके साथ बैठे रात को। तो क्या कर दिया उन्होंने रात को, जब बैठे पत्नी के साथ भागवतम खोली और भागवतम क्लास शुरू कर दी, और एक घंटे की क्लास नहीं थी पूरी रात भागवतम बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। अगले दिन उनकी पत्नी आई इनके गुरु के पास, ये हैं आपके शिष्य, पूरी रात भागवतम सुनाते रहे। तो गुरु जी बड़े खुश हुए, तो बड़ी अच्छी बात है। तो उनके गुरु समझ गए कि ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत से आए हैं। हम लोग ऐसा ना सोच लें कि हम विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी की नकल करेंगे तो गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे। जब तक हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो जाए तो हमें झूठा वैराग्य नहीं दिखाना चाहिए, है ना। इस झूठे वैराग्य की नकल करके हम कोई गैर जिम्मेवार ग्रस्ता ना बने, है ना, ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहिए। ये जो वैराग्य दिखावे का विषय नहीं है, ये वैराग्य स्वयं प्रकट होता है। निश्चित रूप से भक्ति को, एक साधक को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है, और प्रारंभ में हमें ये वैराग्य की विद्या दी जाती है कि चार नियमों का सख्ती से पालन करो। तो जितना सख्ती से हम चार नियमों का पालन करेंगे उतने अच्छे ढंग से हम जप कर पाएंगे, जितना अच्छा ढंग से हम जप कर पाएंगे उतने अच्छे ढंग से हम चार नियमों का पालन कर पाएंगे। तो वैराग्य हमारी भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए सहायक होता है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे स्वतः ही हमारी रुचि भौतिक विषयों से कम होती जाएगी। व्यवहारिक स्तर पे हम वैराग्य को अपने जीवन में इस ढंग से उतार सकते हैं कि कम से कम भौतिक वस्तुओं पर हम निर्भर रहे, ये हमारे जीवन में वैराग्य है। और इसका प्रैक्टिस जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे स्वतः ही हमारी रुचि कम होती जाती है। जिस ढंग से आज रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी मुश्किल से दिन में 90 मिनट विश्राम करते होंगे और 150 ग्राम छाछ पूरे दिन में पीते थे। लेकिन जब वो छाछ पीते थे और ज्यादा से 90 मिनट विश्राम करते थे तो उनको बड़ा दुख होता था कि समय बर्बाद हो गया, उनको बहुत दुख होता था। लेकिन ऐसा नहीं है 150 ग्राम छाछ पी के बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत उनको तपस्या करनी पड़ रही है, नहीं, उनको ऐसा नहीं लगता था कि मैं कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन खाना मिस कर रहा हूँ। आपको तो मालूम हुआ एक बार ही वो उनका पेट खराब हो गया, पूरे राधा कुंड में खबर फैल गई, 150 ग्राम छाछ पीने वाले व्यक्ति का पेट कैसे खराब हो गया। अरे तो उनको पेचिश हो गई, दस्त लगने शुरू हो गए, तो वैद्य आए, उन्होंने उनकी नाड़ी पकड़ी, बोले कि तो जय श्री श्री राधा राधिका रमन, श्री श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। नाड़ी पकड़ी, बोले ये तो बड़ा विशेष रोग है, इन्होंने तो खीर खाई है, खीर खाने से इनका पेट खराब हुआ है। सब बोले क्या बात कर रहे हो, तो ये छाछ के अलावा कुछ लेते नहीं है, वो भी जब छाछ पीते बड़ा पछताते हैं, मैंने समय व्यर्थ गवा दिया छाछ पीने में, ये खीर कैसे खा सकते हैं, और ये कोई झूठे तो संत नहीं है कि छिप छिप कर खीर खाएंगे। हमारे यहाँ पे एक भक्त थे, हम जानते हैं, यहाँ भी संबंधी मैंने कही, और जब हम लोग कुछ खाने को देते थे बोले नहीं नहीं यार क्या है ऐसे कुछ नहीं खाना, अरे प्रभु ले लो ना गुलाब जाना है, ठीक है यार, और आराम से नहीं खाते थे, और फिर वो बेचारे रात को उठते थे भक्तों ने रंगे हाथ पकड़ा, रात को उठे दो खाते हुए, बोले क्या हो क्या करें, हम ऐसे ही यार थोड़ा भूख लगी थी तो रघुनाथ और गोस्वामी जी ऐसे नहीं थे कि दुनिया के सामने छाछ पी रहे हो और बाद में चुपके चुपके से खीर खा रहे हो, तो कैसे खीर खाई उन्होंने, तो फिर मालूम चला वो भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश हो गए थे, और जो गोपियों ने भगवान के लिए खीर बनाई थी उसका उच्चिष्ट उन्होंने पाया था, और आनंद ने कुछ ज्यादा उच्चिष्ट पा लिया, उससे पेट खराब हो गया। तो ये है असली वैराग्य, वैराग्य का मतलब है विशेष राग, वैराग्य करते हुए व्यक्ति दुखी नहीं होता, विशेष राग है भगवान से, और इसलिए जब भगवान से विशेष राग हो जाता है तो दुनिया से वैराग्य हो जाता है, फिर उस भौतिक इच्छाएं नहीं रहती। तो ऐसा वैराग्य था विश्वनाथ चक्र ठाकुर पाद जी के हृदय में, पत्नी के साथ थे, सुंदर पत्नी थी, लेकिन उसको श्रीमद् भागवतम में इतनी रुचि थी कि उनको भी श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना रहे, लेकिन हम लोग उसकी नकल नहीं मार सकते, हम नकल मारेंगे तो हम अनाश्रम धर्म का सही पालन नहीं कर पाएंगे। क्रमशः हम अपने जैसे जैसे भक्ति की विधियों में रुचि बढ़ाएंगे स्वतः ही हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न होगा। तो उनके गुरु ने देखा कि इनकी तो बहुत रुचि है भागवतम में, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए भी भागवतम की एक कॉपी मुझे लिख के दो, तो ठीक है, तो उन्होंने भागवतम लिखना शुरू किया। और अब देखिए जब वो भागवतम लिखते थे तो बहुत विचित्र घटनाएं होती थी, जहां पर बैठ के वो भागवतम लिखते थे अगर तेज सूर्य का प्रकाश है तो बादल प्रकट हो जाते थे उनको छाया देने के लिए, और अगर वर्षा हो रही है तो आसपास वर्षा हो रही होती थी लेकिन उनके ऊपर एक बूंद भी पानी की नहीं पड़ती थी, और जिस जिन पत्तों पर भागवतम लिखते थे वो भी एक बूंद उनको गीला नहीं कर पाता था, कितनी विचित्र बात है। तो ऐसे वो भागवतम लिख रहे हैं और आसपास मूसलाधार बारिश हो रही है, जैसे कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा के ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हो, इस ढंग से भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे। तो एक राजा वहां से पालकी में जा रहा था और सबके सब उसके ऊपर छाता रखे हुए और जोरदार बारिश हो रही है, और वो देख रहे हैं कि एक संत बारिश के बीच में बैठे हुए हैं और आराम से भागवतम लिख रहे हैं और उनके ऊपर एक बूंद भी पानी की नहीं पड़ रही। तो ये था इनका ऐश्वर्य विश्वनाथ चक्र ठाकुर पाद जी का। इसी ढंग से हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब राधा कुंड के तट पे भजन करते थे तो गर्मी के मौसम में भी जब भजन करते थे तो स्वयं श्रीमती राधा रानी आ जाती थी अपने दुपट्टे से उनके ऊपर छाया करते थे। तो सनातन गोस्वामी ने देखा, अरे आप क्या कर रहे हो, श्रीमती राधा रानी से सेवा ले रहे हो, अपनी भजन कुटीर बनाओ। एक बार पहले और बैठे थे राधा कुंड के तट पे भजन कर रहे थे तो शेर आ गया था, तो स्वयं भगवान प्रकट हो गए थे लाठी लेकर शेर से रक्षा करने के लिए। तो हम क्या सीख सकते हैं इससे कि अगर हम अपने भजन में रम रहेंगे, पूरा एब्जॉर्व रहेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अनचिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते ये तेषां नित्य मुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम्। भगवान हम लोग ज्यादा चिंता ये करते हैं वो रहेगा नहीं रहेगा, भौतिक परिस्थितियां कैसी रहेगी, और हमारा मन भागवतम पढ़ने में सुनने में नहीं लगता। हो सकता है हम यहाँ क्लास में ही बैठे हों और हमें भी चिंता चल रही हो, है ना, ऑफिस में ये करना है वो करना है ये करना है, और जल्दी खत्म हो हम भागे, लेकिन विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी पूरा भागवतम लिखने में लगे हुए हैं और पूरी की पूरी भौतिक परिस्थितियां भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। इसी तरह से शिला प्रभुपाद जब जलदूत में थे और जब उनको दो हार्ट अटैक हुए तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पूरे समुद्र को एकदम शांत बना दिया। जिस समुद्र में इतनी उथल पुथल हो रही थी, बिल्कुल शांत। और कैप्टन पांडा ने बोला कि मैंने अपने जीवन काल में इतना शांत समुद्र कभी नहीं देखा। तो मया दक्षिण प्रकृति सुहृद सचराचरम, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति चलती है। इस प्रकृति के सुख दुख से हम नहीं बच सकते, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ये जो नवे अध्याय का 22वां श्लोक है, योगक्षेम वहामि अहम्, इसकी टीका में सारात वर्षिणी में विश्वनाथ चक्र ठाकुर पाद कहते हैं कि भगवान करे वहामि अहम्, मैं कैरी करता हूं, मैं उठाता हूं उसके बोझे को। ये नहीं कि अपनी प्रकृति से, अपनी शक्ति से भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, नहीं, वहामि अहम्, स्वयं मैं रक्षा करता हूं, स्वयं मैं उठाता हूं भक्तों के इस बोझ को। वो मेरे लिए बोझा नहीं है, वो तो मेरे लिए प्रेम का बोझा है, बर्डन ऑफ लव। कैसे प्रेम का बोझा है? क्योंकि विष्णुनाथ चक्र ठाकुर जी रसिक आचार्य हैं, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को गोद में उठाता है, वैसे मैं अपने भक्तों के कार्यों को पूरा करता हूं, उनके बोझे को उठाता हूं। ये टीका है। तो इसलिए भगवान हमें गारंटी दे रहे हैं, हमें निश्चिंत होके अनश्चिंतयंतो मां ये जना परिपासते, इसका हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो उसके बाद ये दोबारा वृंदावन में आते हैं और वृंदावन में रह के इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे और वृंदावन में अलग अलग स्थानों में घूमते थे। ये यावट में भी रहे, गोवर्धन में भी रहे और मुख्यतः राधा कुंड में भी रहे। 40 से 80 इन्होंने पुस्तकें लिखी, माधुरी कंदम कदामिनी, और उसके बाद उन्होंने रागवर्तमिका चंद्रिका, और ऐसे ग्रंथ लिखे। और जब वो ग्रंथ लिखते थे और ग्रंथ के साथ साथ जिस स्थान पर उन्होंने ग्रंथ लिखे उस स्थान को भी वो लिख देते थे कि इस स्थान पर मैंने ये पुस्तक लिखी है। तो एक बार इसी ढंग से वो गोवर्धन के किसी गुफा में थे तो भगवान श्री कृष्ण के स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम जो षट गोस्वामियों ने ग्रंथ लिखे हैं इसके ऊपर टीकाएं लिखो। कोई षट गोस्वामी जो ग्रंथ लिखे वो बहुत ऊंची संस्कृत में लिखे हुए थे, साधारण जनता के लिए वो उसको नहीं समझ सकते थे, तो आप साधारण संस्कृत और बंगाली में इन ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखे। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने षट गोस्वामी ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी और उनकी टीकाओं के ऊपर फिर शिला प्रभुपाद जी ने हमारे सामने भागवतम के तात्पर्य और गीता के तात्पर्य दिए और वो हमारे सामने आज उपस्थित हैं। तो ये है इनका हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन। शिला प्रभुपाद जी ने भगवत गीता की टीका अधिकांशतः इनके शिष्य बलदेव विद्यभूषण की टीकाओं पर लिखी। इनके विश्वनाथ चक्र ठाकुर पाद जी के एक श्लोक भगवदगीता के 2 अध्याय का 41वां श्लोक, वैसायात्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदना, इस श्लोक की टीका में विश्वनाथ चक्र ठाकुर पाद जी लिखते हैं कि एक शिष्य को गुरु के आदेशों को अपने हृदय में ढक लेना चाहिए। द गुरुज इंस्ट्रक्शन शुड बी द हार्ट एंड सोल फॉर द डिसाइपल। तो ये बात जब श्रील प्रभुपाद जी ने पढ़ी तो प्रभुपाद जी को बहुत प्रेरणा मिली और प्रभुपाद जी के गुरु का आदेश था कि पाश्चात्य देशों में जाके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार हो। तो प्रभुपाद जी सोचते थे, चलो प्रभुपाद जी पूरा योजना बना रहे थे कि सब कुछ त्याग करके विदेशों में जाएंगे और महाप्रभु के संदेश का प्रचार करेंगे, तो सोच रहे थे इसके ऊपर। तो ये श्लोक पढ़ के उनको बहुत प्रेरणा मिली कि गुरु के आदेश को हमने अपने हृदय में पूर्ण रूप से उतार लेना चाहिए और वो हमारी आत्मा होनी चाहिए, गुरु के आदेश। इसलिए प्रभुपाद जी बाहर गए विदेशों में और इतने कष्टों को सहते उन्होंने प्रचार किया और उनके प्रभुपाद जी कृपा से आज हम यहाँ पर इस कॉन में उपस्थित हैं। अगर विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी की टीका नहीं होती, प्रभुपाद जी को प्रेरणा नहीं मिलती और आज हम यहाँ पर सब नहीं होते। विश्वनाथ चक्र ठाकुर पाद की। तो इस ढंग से उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे और टीकाएं लिखी षड गोस्वामियों के ग्रंथों के ऊपर। उस समय मथुरा में एक बहुत अच्छे भक्त थे जिनके पास एक बहुत सुंदर से विग्रह थे और उन विग्रह का नाम था गोकुलानंद और विग्रह की बहुत अच्छे ढंग से सेवा करते थे, बिल्कुल उच्चतम स्तर की सेवा। उच्चतम स्तर के अर्च विग्रह की सेवा होती है कि जो अर्च विग्रह की पसंद हो उसके अनुसार ही कार्य करना। जो अर्च विग्रह को पोशाक पसंद हो वो पोशाक डालने, जो अर्च विग्रह को खाना अच्छा लगे वो भोग पकाना, यानी कि जो मुझे अच्छा लगे वो भगवान को भोग लगाना, जो भगवान को अच्छा लगे वो भगवान को भोग लगाना, जो भगवान को संगीत अच्छा लगे वो भगवान को सुनाना, अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं भगवान की इच्छा की पूर्ति के अनुसार वो पूजा करते थे। इतनी अच्छे ढंग से मूर्ति वगैरह की पूजा कर रहे थे। एक दिन गोकुलानंद जी उस भक्त के स्वप्न में आए और बोले कि मेरा एक और भक्त है विश्वनाथ चक्रवर्ती, उसके पास जाओ और मैं चाहता हूं कि वो मेरी सेवा करे। तो ये भक्त विश्वनाथ चक्र ठाकुर पास के गए और बोले कि भगवान ने ये इच्छा प्रकट की है कि आप इनकी सेवा करें। विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने बहुत विनम्रता से बोला कि ये मैं इनकी सेवा नहीं कर सकता, मेरे में इतनी योग्यता नहीं है, आप इतने शंख से सेवा कर रहे हैं आप ही कीजिए, आप वापिस ले जाइए। तो वापिस ले गए, वापिस ले गए, भगवान दोबारा से उस भक्त के स्वप्न में आए। अरे मैंने कहा ना दोबारा मुझे ले जाओ, तो बोले मैं तो ले गया था, वो उन्होंने वापिस कर दिया। बोले अब मैं उनके सपने में भी आऊंगा। तो उनके सपने में भी विश्वनाथ चक्र ठाकुर बाबा जी के स्वप्न में भी भगवान आए। बोले चिंता मत करो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सेवा करो, अपने भोजन का रहने का मैं खुद प्रबंध कर लूंगा लेकिन तुम मुझे स्वीकार करो। देखिए क्या भगवान की लीला है, भगवान भक्तों से निवेदन करे कि मुझे स्वीकार कर लो। तो विश्वनाथ चक्र बाबा जी ने जब भगवान का इतना सुंदर रूप देखा और इतनी मधुर वाणी सुनी, आप में से कितने भक्तों ने भगवान की वाणी सुनी है, सुनी है? कल्पना कीजिए भगवान आपके सपने में आए, राधिका रमन जी आपके सपने में आए और बोले, क्या वाणी होगी वो और कैसे दिखेंगे, सोचिए जरा। तो इतने रोमांचित हो गए विश्वनाथ चक्र ठाकुर पाद, जैसे उठे उनकी नींद खुली तभी दरवाजे पे ठक 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 खोला तो सामने कौन खड़े हैं, स्वयं गोकुलानंद जी खड़े हैं उन भक्तों के हाथ में। और विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने गोकुलानंद जी को स्वीकार किया और गोकुलानंद जी की उन्होंने अर्चना प्रारंभ की, राधा गोकुलानंद जी की। तो आप सब लोग गए होंगे वृंदावन में राधा गोकुलानंद मंदिर, कितने भक्त गए हैं आप में से राधा गोकुलानंद मंदिर में? तो अभी भी वो विग्रह उपस्थित है ऑलरेडी राधा गोकुलानंद मंदिर के साथ। राधा गोकुलानंद जी के साथ वहां पे एक और अद्भुत एक शिला है, कौन सी शिला है? गोवर्धन शिला। वो शिला की क्या खासियत है? महाप्रभु के अंगूठे के निशान है। तो वो शिला भी चक्रवर्ती ठाकुर पाजी के पास कैसे आई? ये गोवर्धन शिला वृंदावन से जगन्नाथपुरी गई महाप्रभु के पास, और महाप्रभु भगवान कृष्ण हैं स्वयं राधा रानी के भाव में, वो हमेशा इस गोवर्धन शिला को देखते रहते थे और अविरल अश्रुधारा बहती रहते थे, और चैतन्य महाप्रभु उनको अपने गले से बांध के रखते थे और बार बार अपनी आंखों में लगाते थे, माथे पे लगाते थे। और महाप्रभु को एक बार इतना विरह हुआ क्योंकि गोवर्धन स्वयं भगवान कृष्ण है और महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, तो महाप्रभु एक बार इतना विरह हुआ और उस विरह की अग्नि से जो गोवर्धन शिला है वो पिघल गई और महाप्रभु के अंगूठे का निशान उस पर पड़ गया। ये महाप्रभु को वो शिला इतनी प्रिय थी। और फिर महाप्रभु की शरण में आए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी बहुत ही धनाढ्य परिवार से थे और बहुत तीव्रता थी उनके अंदर कि मैं महाप्रभु की शरण ग्रहण करूं, और सब कुछ त्याग के वो महाप्रभु की शरण में आए। जगन्नाथपुरी में उन्होंने शरण ग्रहण की और महाप्रभु ने जब उनके जीवन में इतनी भक्ति इतनी विनम्रता इतना वैराग्य और त्याग देखा तो अपनी भक्ति और विनम्रता से उन्होंने महाप्रभु के हृदय को जीत लिया। रघुनाथ दास गोस्वामी जब आए थे तो उनके पिता उनको धन भेजा करते थे कि सभी वैष्णव आप तुम रख रखाव के लिए ना, जैसे यहाँ पे भी हम देखते हैं कोई युवा जब ब्रह्मचारी बनता है उनके माता पिता जी खूब बढ़िया बढ़िया वस्तुएं लाते हैं खाने पिलाने की, है ना, कि बच्चा खाता रहे तो सवा सारे लोग खाते हैं भक्त लोग सब प्रसन्नता से। तो इसी ढंग से वो धन देते थे, उस धन से वो महीने के महीने में चैतन्य महाप्रभु को बढ़िया फीस देते थे और फिर उसका महाप्रसाद मिलता था। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ उनका वैराग्य बढ़ता गया और फिर वो भिक्षाटन करने लगे। भिक्षाटन में छोड़कर जो प्रसाद बिल्कुल गल जाता था आनंद बाजार में, जिसको गाय भी नहीं खाती थी उसको वो धोकर उसमें थोड़ा नमक डाल के वो खाते थे। तो महाप्रभु ने जब देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर इतनी वैराग्य और वैराग्य के साथ साथ इतनी विनम्रता और इतनी भक्ति, उन्होंने महाप्रभु के हृदय को जीत लिया और महाप्रभु ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु वो गोवर्धन शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दे दी। तो यहां हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्त को उपहार दे रहे हैं। और वो उपहार दे रहे हैं जो उनको बहुत प्रिय है। ये है उपहार देने की कला, उपहार देने का विज्ञान। हमें भक्तों में आपस में एक दूसरे को और भगवान को भी हम जब भेंट चढ़ाते हैं तो वो भेंट चढ़ानी चाहिए, वो उपहार देना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय हो। हमें वो उपहार नहीं देना चाहिए किसी भक्त को, चलो यार अलमारी में बहुत देर से पड़ा है, खाली करनी अलमारी, लो भैया। नहीं, महाप्रभु का हृदय था उसमें, महाप्रभु उसको देखकर रोते थे, उस गोवर्धन शिला, वो साक्षात कृष्ण और वो महाप्रभु स्वयं राधा रानी के भाव में, वो गोवर्धन शिला उन्होंने अपने प्रिय भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दी। और महाप्रभु के तिरुभाव के बाद जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी वृंदा राधा कुंड में आए तो उन्होंने अपने तिरुभाव से पहले ये शिला अपने शिष्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को दी, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इसकी खूब सेवा की गोवर्धन शिला की। फिर उन्होंने अपने शिष्य मुकुंद दास जी को दी, और मुकुंद दास जी ने फिर ये शिला एक वैष्णवी थी जिनका नाम था कृष्ण प्रिया ठकुरानी, उनको ये शिला दी, और कृष्ण प्रिया ठकुरानी से ये शिला विष्णु चक्रधर पाद जी के पास आई और अभी राधा गोकुलानंद मंदिर में है जिनके हम दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस ढंग से विश्वनाथ चक्र ठाकुर पाद जी गोवर्धन शिला की भी उन्होंने सेवा की, और वो बलदेव विद्याभूषण जी के साथ मिलकर खूब प्रचार कर रहे थे। लेकिन जब वो प्रचार कर रहे थे तो उनके बहुत से शत्रु इकट्ठे हो रहे थे, तो ऐसे कुछ शत्रुओं ने सोचा कि अब तो इनका वध करना पड़ेगा। तो एक बारी विश्वनाथ चक्र ठाकुर पाद वृंदावन के निकुंज में ऐसे जा रहे थे और कुछ वैष्णव लोग उनका वध करने के लिए उनके पीछे पीछे भागे, और जब भागते भागते वो विष्णु चक्र ठाकुर पाद को पकड़ने लगे तो देखा कि चक्रवर्ती पाद जी के स्थान पे एक बहुत सुंदर सी बालिका है जो कि फूल तोड़ रही है कुछ और सखियों के साथ। तो सब बड़े हैरान हो गए, तो उन्होंने छोटी बालिका से पूछा, क्या तुमने चक्रवर्ती जी को देखा, यहीं से निकल रहे थे? कहते हाँ अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन ऐसा है तुम फटाफट भाग जाओ यहाँ से। हाँ, तुम्हें मालूम है श्रीमती राधिका भी यावट से आने वाली है और इस स्थान पे कोई भी पुरुष नहीं आ सकता, चलो जाओ यहाँ से। ये कहा और छोटी सी बालिका अंतर्धान हो गई, उसकी सखियां भी गायब हो गई और उनके स्थान पे कौन खड़े थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद स्वयं। तो सबके सब व्रजवासी समझ गए कि ये जो विष्णु चक्रवर्ती पाद हैं ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला में एक मंजरी है। तो उन्होंने अपना मंजरी स्वरूप उनको दिखाया और फिर सबके सब विष्णु चक्र ठाकुर पाद जी के शिष्य बन गए। विष्णुनाथ चक्रवर्ती पाद की। तो इस ढंग से वो कई ग्रंथ लिख रहे थे, तो एक बारी काम गायत्री के ऊपर उन्होंने लिखना शुरू किया। काम गायत्री आप जानते हैं, गायत्री एक मंत्र है और उसमें काम गायत्री मंत्र होते हैं जिसमें श्रीमती राधा रानी कृष्ण का गुणगान कर रही हैं, और ये काम गायत्री मंत्र के माध्यम से हम श्रीमती राधा रानी की महिमा को समझ सकते हैं। तो जब वो काम गायत्री मंत्र के ऊपर टीका लिखने लगे थे तो ये काम गायत्री मंत्र के विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी स्वयं संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने देखा इस काम गायत्री में 25 अक्षर हैं, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बताया गया है कि इसमें 24.5 अक्षर हैं। और ये सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हुए रूप चैतन्य महाप्रभु ने बताया काम गायत्री के विषय में, उसमें 24.5 अक्षर बताए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी जब इस पर टीका लिख रहे हैं तो उनको 25 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत परेशान हुए, ये कैसे हो सकता है, कई ग्रंथों को पढ़ा फिर उनको 25 अक्षर लग रहे थे, तो इतने परेशान हो गए। इन्होंने बोला जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, और राधा कुंड के तट पे बैठ के उन्होंने फास्टिंग व्रत ले लिया। हुआ ऐसा? ऐसे एक बार अद्वैताचार्य जी के साथ हुआ था, उनका आविर्भाव दिवस परसों आएगा। अद्वैताचार्य जी भगवत गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे थे, तो 13वें अध्याय में एक श्लोक आता है, उसको वो समझ नहीं पा रहे थे क्या मतलब है इसका, श्लोक का तात्पर्य नहीं समझ पा रहे थे, तो क्या किया उन्होंने, इन्हीं श्लोक अगले श्लोक में चले, उसी श्लोक पर रुक गए और बोले जब तक इसका अर्थ क्लियर नहीं होगा मैं व्रत रखूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो ये होती है भक्तों की सिंसियरिटी। सोचा था मैं ऐसा सोचूंगा तो फिर पहले तो शास्त्री बड़ी मुश्किल से खोलते हैं वो खोल लिया उसके ऊपर कुछ समझ में नहीं आया तो व्रत भी रखना पड़ेगा तो कौन करेगा इतना, नहीं भगवान की इतनी सिंसियरिटी थी, राधा कुंड के तट पे बैठ गए कि जब तक समझ में नहीं आएगा कि काम गायत्री में कृष्णदास कविराज जी ने 24.5 अक्षर क्यों लिखे हैं, उन्होंने व्रत रखा और फिर उनके सपनों में स्वयं श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है। बोलते हैं विश्वनाथ चिंता मत करो, शोक छोड़ दो, ये जो कृष्णदास कविराज ने लिखा है 24.5 अक्षर ये बिल्कुल ठीक है। ये जो 24.5 अक्षर हैं ये भगवान के दिव्य देह पर 24.5 चंद्रमा को प्रकट करते हैं, उनको इंगित करते हैं। भगवान के दिव्य देह में 24.5 चंद्र हैं। कहाँ कहाँ पे हैं चंद्र? भगवान के जो दो हाथ 10 नाखून, ये 10 चंद्र भगवान के हाथ में जो नाखूनों की तुलना नख चंद्र, ये चंद्र राशि की गई है। 10 तो ये हो गए और 10 हो गए पांव के नख, कितने हो गए 20। भगवान का दाहिना गाल एक चंद्र है, भगवान का बाहिना गाल दूसरा चंद्र, कितने हो गए 22। और भगवान का मुख चंद्र, ये सभी चंद्रमा का राजा बोला जाता है, ये कितने हो गए 23। और भगवान के माथे पर जो चंदन का टीका है, चंदन का जो निशान है, वो भी इसकी तुलना चंद्रमा से की गई है, कितने हो गए 24। और भगवान का जो माथा है एक और चंद्र है, लेकिन इसकी तुलना आधे चंद्र से की गई है, जैसे आधा चंद्र होता है वैसे भगवान का माथा है, तो ये कितने चंद्र हो गए 24.5। तो इस ढंग से स्वयं श्रीमती राधा रानी ने विष्णु चक्रधर रूपा जी को समझाया कि ये 24.5 अक्षर कैसे हैं। और फिर श्रीमती राधा रानी ने बताया कि इसको आप एक ग्रंथ में भी पा सकते हो, उसी ग्रंथ को कृष्णदास कविराज जी ने पढ़ के ये लिखा कि इसमें 24.5 अक्षर हैं। तो उस ग्रंथ का नाम बताया उन्होंने वर्णगम भस्वदी। देखिए राधा रानी जी भी शास्त्रों को कोट कर रही हैं ऐसे नहीं बोल देना, हाँ जी मान जाएंगे, मुझे पंडित हैं इनको बताना पड़ेगा कौन से ग्रंथ में लिखा गया है, कौन से शास्त्र में। तो राधा रानी ने उस शास्त्र का नाम बताया कि जाके उस शास्त्र में पढ़ लेना, उस शास्त्र को पढ़ के ही कृष्णदास कविराज जी ने लिखा है 24.5 चंद्र है, 24.5 अक्षर। तो विष्णु चंद्र ठाकुर जी ने उस शास्त्र को पढ़ा और देखा हाँ 24.5 अक्षर बताए गए हैं, तो इस ढंग से उन्होंने इसके ऊपर टीका लिखी और फिर बोले हे राधे कि आपने इसका मतलब मुझे स्वीकार कर लिया है अपनी सेविका के रूप में। तो ये आदान प्रदान होता था विष्णु चक्र ठाकुर जी का भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के साथ। तो जब वो इतना जोर शोर से प्रचार कर रहे थे तो जयपुर में, क्योंकि सारे के सारे जो गोस्वामी के विग्रह थे, षड गोस्वामी के विग्रह, वो जयपुर में स्थानांतरित हो गए थे और राधा गोविंद देव जी की पूजा स्वयं जयपुर के राजा राजा जयसिंह कर रहे थे और राजा जयसिंह पूर्ण रूप से रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के अनुसार चल रहे थे। लेकिन उस समय वहां पे रामानंदाचार्य संप्रदाय के एक और संप्रदाय है रामानंदी संप्रदाय, तो रामानंदी संप्रदाय ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है ये प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि ये लोग राधा रानी की पूजा करते हैं, तो राधा रानी की पूजा कौन से शास्त्र में बताई गई है। और उन्होंने इतना ज्यादा इसका प्रचार कर दिया कि राजा जय सिंह इतने प्रेशर दबाव में आ गए कि उन्होंने राधा गोविंद जी की राधा रानी को अलग कर दिया और छिप छिप के उनकी पूजा करने लगे। तो ये बात बहुत ज्यादा, सारे गौड़िया वैष्णव बहुत चिंतित हो गए कि उनकी संस्कृति आगे बढ़ेगी नहीं आगे, और रामानंदियों का प्रचार बढ़ता जा रहा था। तो राजा जयसिंह ने वृंदावन में विष्णु चक्र ठाकुर जी को संदेशा भिजवाया कि आप आइए इन लोगों को समझाइए। तो उस समय विष्णु चक्र ठाकुर जी की आयु बहुत हो गई थी, तो उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण जी को बोला कि आप जाकर उनके साथ शास्त्रार्थ कीजिए। तो हम देखते हैं भैया आप में से जयपुर गए होंगे, जयपुर में एक स्थान है गलता, गए गलता पे, कितने भक्त लोग गए गलता में, है ना, जाना चाहिए, बहुत ऊंचाई पे गलता है, वहां पे हो गए। बलदेव विद्याभूषण जी ने रामानंदियों के साथ बहस की और उनको सारा शास्त्रों के आधार पे समझाया। तो उनका ये कहना था कि नारायण की पूजा पहले होनी चाहिए, बाद में कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। तो बलदेव विद्याभूषण ने उनको बताया नहीं, नारायण कृष्ण से आए हैं, जो मध्वाचार्य संप्रदाय में पहले नारायण की पूजा करते हैं उनका कहना है कि विष्णु से भगवान कृष्ण आए हैं, लेकिन वस्तुतः हम सब जानते हैं कि कृष्ण सब कारणों के कारण है। तो बलदेव विद्याभूषण ने उनको समझाया कि किस ढंग से कृष्ण सब कारणों के कारण है। फिर उनका कहना था कि राधा रानी की पूजा आप साथ में क्यों करते हैं, तो वो भी बलदेव विद्याभूषण ने बताया। फिर तीसरा उनका ऑब्जेक्शन था कि आपकी संप्रदाय तो प्रमाणिक है ही नहीं, आपने कोई वेदांत सूत्रों पर भाष्य लिखा ही नहीं, तो बलदेव विश्राम जी ने बताया कि श्रीमद भागवतम स्वयं एक कॉमेंट्री है वेदांत सूत्रों पे, तो इस बात को माने नहीं, बोले अलग भाष्य होना चाहिए। तो केवल दो चार दिन का उनका समय दिया, फिर बलदेव विद्याभूषण जी गोविंद देव जी की शरण में आए और गोविंद देव जी ने बोला आप चिंता मत करो, मैं बोलूंगा तुम लिखते जाना। तो गोविंद देव जी खुद वेदांत सूत्र का है ना, वेदेश सर्वे अहमेव वेद, है ना, भगवान कहते हैं सभी वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूं और सारे वेदों का संकलन मैंने ही किया और उन वेदों के ऊपर कमेंट्री भी गोविंद देव जी ने दी। तो वेदों के ऊपर कमेंट्री दी गोविंद देव जी ने और बलदेव जी उसको लिखा और फिर दो दिन के बाद जाके सबके सामने रखा और वो क्या कहलाता है, गोविंद भाष्य। तो फिर इस जंग से उस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को उन्होंने स्थापित किया। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सेवक ठाकुर महाराज विश्वनाथ चरण ठाकुर पाद जी को बोलते हैं कि ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के रक्षक और संरक्षक हैं। इन्होंने ही गौड़िया वैष्णव संस्कृति की रक्षा की है, सही ढंग से सिद्धांत का प्रचार करके रामानंदियों के आगे इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को स्थापित करके। अगर उस समय इसकी रक्षा ना की होती तो चैतन्य महाप्रभु का संदेश हम तक कैसे पहुंचता और इस कलयुग में हम जैसे जीवों का उद्धार कैसे होता। तो कितना महान इनका योगदान है हम सबके जीवन में। और विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने सुंदर सुंदर ग्रंथों के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे भजन भी लिखे, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं भी लिखी और इनकी एक प्रार्थना हम प्रतिदिन बोलते हैं, कौन सी वो प्रार्थना है, संसार दावन, है ना। तो हम सुबह प्रतिदिन उठते हैं मंगल आरती में इस प्रार्थना को बोलते हैं और कहा जाता है कि जो भक्त सुबह उठकर अपने गुरु का स्मरण करता है सुबह मंगल मुहूर्त में प्रातः काल में, वह आध्यात्मिक जगत में बहुत तीव्रता से आगे प्रगति करता है। तो सभी भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इस गुरु अष्टकम का गान करना चाहिए, संसार दावा नलीन लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो हमें प्रार्थना प्रतिदिन, अगर हम मंदिर में आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मंदिर नहीं आ सकते घर में भी हैं तो प्रतिदिन प्रातः काल में जितनी जल्दी से जल्दी ब्रह्म मुहूर्त हो तो बहुत अच्छी बात है, तो प्रतिदिन सुबह हमें उठ के इसका गायन जरूर करना चाहिए और इससे हम पूरी गुरु परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं। तो इस ढंग से विश्वचक्रवर्ती पाद जी ने हम सबके जीवन में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके जीवन चरित्र को सुनकर सभी वैष्णवों को बहुत प्रसन्नता, बहुत आनंद और बहुत प्रेरणा प्राप्त होती है। यही आचार्यों का हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण योगदान है और हम सबको तो सब कुछ प्लेट पर मिल गया है ना, सब कुछ तैयार, सब कुछ फर्स्ट क्लास बुक्स हैं, फर्स्ट क्लास प्रसादम है, फर्स्ट क्लास मंदिर है, हमें कोई वृंदावन के जंगलों में नहीं घूमना, कोई शेर हमें मारने नहीं आ रहा, सब कुछ सारी फैसिलिटीज हमारे पास हैं और हमारे पास अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर वेदा बेस है, ऊपर से इंटरनेट है, इस्कॉन डिजायर ट्री है, लाइव दर्शन है, घर में बैठे बैठे आप सुन सकते हैं, सारी टेक्नोलॉजी है। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना, एरोप्लेन है, उड़ के सीधा जा सकते हैं जगन्नाथपुरी मायापुर, चल के हाँ तो चल के जाना पड़ता था, पत्तों पर लिखना पड़ता था, कुछ भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी। हमारे पास आज कुछ सब कुछ है, बस हमें केवल क्या करना है, इनकी शिक्षाओं के अनुसार चलना है, अपने मन को नियंत्रित रखना है अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से। अभ्यास क्या, कि जो इनकी शिक्षाएं हैं, जो इनके इंस्ट्रक्शंस हैं, इनका हम पालन करें। और वैराग्य क्या, कि जो इन्होंने हमें मना किया है कि भक्ति के लिए हानिकारक है, इनको हम ना करें। बस अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, केवल इतना करते रहें और अपने जिसे कहते हैं स्टीयरिंग को आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दें, तो निश्चित रूप से हम इसी जीवन में इन सभी आचार्यों की कृपा को प्राप्त करके भगवत धाम वापिस जा सकते हैं। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम बाकी सब आचार्यों के जीवन चरित्र को भी आप पढ़िए, इस पर चर्चा कीजिए, हम इनसे बहुत प्रार्थनाएं करें आज का दिन हम सबसे प्रार्थना कर सकते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी से प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में इतना वैराग्य ला सकें, त्याग की भावना ला सकें, अपने आप को समर्पित कर सकें। रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रतिदिन 1000 बारी गोवर्धन शिला को, गोवर्धन को प्रणाम करते थे और 2000 बारी वैष्णवों को प्रणाम करते थे, इतनी विनम्रता। उसके साथ पुंडरीक विद्यानिधि जी, पुंडरीक विद्यानिधि जी के पास इतना ऐश्वर्य था, उसके बावजूद बिल्कुल उनसे अनासक्त थे और भगवान की कथा श्रवण में बहुत रुचि थी। विष्णुप्रिया माता जी, विष्णुप्रिया माता जी जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो जितनी बारी वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती थी उतने एक एक चावल के दाने इकट्ठे करती थी और केवल उतना ही उसी का चावल वो स्वीकार करती थी। इतना त्याग और इतना उनके अंदर ये था कि उन्होंने महाप्रभु उनको बोल कर गए कि मैं संन्यास ले रहा हूँ और इस महाप्रभु के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इतने कष्टों को इतना सहा। और रघुनंदन ठाकुर ने अपने हृदय की सरलता से भगवान को प्रसन्न किया। छोटे बालक के रूप में उन्होंने भगवान से जिद की कि आपको ये लड्डू खाना ही पड़ेगा। और जब चैतन्य महाप्रभु को मालूम चला तो चैतन्य इनके रघुनंदन ठाकुर जी के पिता का नाम था मुकुंद दास, तो महाप्रभु ने मुकुंद से पूछा कि कौन पिता है और कौन बेटा है। इनकी भक्ति इतनी तीव्र थी। तो इन सभी आचार्यों से हम प्रार्थना करें कि इनकी कृपा पर ही हमारी भक्ति चल रही है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति सोलली एंड होली डिपेंडेंट ऑन मर्सी, एकमात्र और पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है। हमारे हृदय में अच्छी वासनाएं उत्पन्न हो और असत वासनाएं उत्पन्न ना हो, कामुक वासनाएं उत्पन्न ना हो, ये सारा निर्भर करता है कि हम वैष्णवों को कितना प्रसन्न कर रहे हैं। अगर हम इन आचार्यों को प्रसन्न कर लेंगे तो हमारा भक्ति का मार्ग बहुत सरल हो जाएगा। बिना इनकी कृपा के, जब तक मैंने से पूर्ववर्ती आचार्यों में से कि हृदय को प्रसन्न नहीं करेंगे, कोई भगवान से प्रार्थना नहीं करेगा कि इस बच्चे का उद्धार कर दो, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। पूर्ण रूप से इनकी कृपा पर निर्भर है, पूर्ण रूप से। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हम अपना इनके साथ कोई कनेक्शन देखते नहीं है। हमें लगता नहीं हमारा रघुनाथ दास गोस्वामी से कोई कनेक्शन है, हमें नहीं लगता कि हमारा विष्णु चक्र ठाकुर पाद से कोई कनेक्शन है, है ना। ठीक है, वो पहले थे, लेकिन आज के दिन हम देख सकते हैं, रोज हम इनके द्वारा लिखे हुए भजन को गाते हैं, इनकी टीकाओं के आधार पर प्रभुपाद जी ने हमें आज भागवतम और भगवदगीता की टीकाएं दी, और इन्होंने किस जंग से गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की रक्षा की। इन्होंने अपने जीवन चरित्र से दिखाया कि अगर हम भागवतम अपने आप को पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमारा भौतिक जगह से कैसे वैराग्य उत्पन्न होगा, किस ढंग से अगर हम भागवतम के श्रवण और अध्ययन में और कीर्तन में लीन हो जाएंगे तो किसी भी प्रकार की भौतिक अवस्था हमें विचलित नहीं कर पाएगी। ये अपने जीवन चरित्र से वो दिखा रहे हैं और किस प्रकार से भगवान इनके प्रकट होते हैं इनके सामने, स्वयं श्रीमती राधारानी इनके सामने प्रकट होती हैं और आदेश देती हैं। तो ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है, ये कोई अमर चित्र कथा नहीं है, ये वास्तव में अमर कथाएं हैं जो कि वास्तविक कथाएं हैं और हम सबको प्रेरणा और हम सबको निर्देश देने के लिए हैं। तो आज के दिन हम खूब प्रार्थना कर सकते हैं इन सभी आचार्यों से और आपस में मिलकर इनके विषय में हम चर्चा कर सकते हैं और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को हम सुधार सकते हैं। तो सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। शिला विश्वनाथ चौधरी ठाकुर पाद की, शिला गुणादास गोस्वामी पाद की, शिला गुणंदन ठाकुर जी की, पुंडरीक विद्यानिधि जी की, विष्णुप्रिया माता की, वसंतरास उत्सव की, यदाई गो प्रेमानंदे।